अमृत है स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम में आपको हमारा प्रेम भरा नमस्कार। कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। श्रोताओ, इन दिनों में हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से अय्यूब नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक का मुख्य विषय है अय्यूब की पीड़ाएं और समस्याएं। हमें विश्वास है श्रोताओ कि इस पुस्तक के द्वारा आपको आत्मिक ज्ञान मिल रहा है। तो आइए आज के इस अध्ययन में शामिल हों, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
यीशु है महान, प्रभु है महान, यीशु है महान, प्रभु है महान। इस दुनिया में सबसे ऊंचा यीशु
मित्र। प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको पुनः मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा है कि आप सब भी परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते हुए आनंदित हैं और फिर से एक बार आज परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने सभी नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम सब बाइबल के पुराने नियम की पुस्तकों में से अय्यूब नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने 16 और 17 अध्याय का अध्ययन किया, जिसमें हमने अय्यूब के प्रतिवाद या वार्ता को सुना। और आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि विलदत, जो अय्यूब का एक मित्र है, दूसरी बार फिर से कहना आरम्भ करता है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम, दया और करुणा के लिए, जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है कि आज हम जीवतों के बीच में जीत पाए जाते हैं। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, अय्यूब की पुस्तक का अध्ययन करते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें से प्रत्येक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, ताकि आज जो कुछ भी हम सुनते हैं प्रभु, निश्चित रूप से हमें से हरेक के जीवन के लिए लाभ का कारण बन सके। और हमारे उन मित्रों के लिए भी प्रार्थना है जो बीमार हैं, निराश हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, अय्यूब की तरह किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित हैं। हमारी प्रार्थना है कि प्रत्येक को आप छुए और चंगाई प्रदान करें, अपनी आशीष प्रदान करें, इस समय हम सब के साथ हो और अपनी शांति हमें प्रदान करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम इन दिनों अय्यूब की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम 18 अध्याय से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे। आज का विषय होगा विलदत का दूसरा वाद या दूसरी बार फिर से कहना। जी हाँ, यह शूही विलदत के विवाद का दूसरा सत्र था। यहाँ रोचक बात तो यह है कि उसके पास भी कोई नई बात नहीं है। आपको स्मरण होगा कि वह प्रथाओं का पालन करता है, उसके पास कहावतों और नीति वचनों की श्रृंखला है जिनका वह यहाँ पर प्रदर्शन करेगा। उसके पास सूक्तियों, धार्मिक शब्दों और कहावतों की श्रृंखला है। उनमें से कुछ तो अति उत्तम है, परंतु एक भी अय्यूब के मुद्दे का या मुद्दे पर प्रकाश नहीं डालती है। अय्यूब 18 अध्याय उसके 1-3 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, तब शूही विलदत ने कहा, तुम कब तक फंदे लगाकर वचन पकड़ते रहोगे? चित लगाओ, तब हम बोलेंगे। हम लोग तुम्हारी दृष्टि में क्यों पशु के तुल्य समझे जाते हैं और अशुद्ध ठहरे हैं? ध्यान दीजिए, विलदत सीधी सी बात कहता है कि अय्यूब, यदि तू अपना मुंह बंद करे तो हम कुछ कहें। अब तू मुंह बंद करके सुन, सुनने की अपेक्षा तू बोलता ही जा रहा है। सच तो यह है कि उन सबको शांत होकर सुनना था, परंतु उस समय वे परमेश्वर की वाणी सुनने को तैयार नहीं थे। परमेश्वर अय्यूब को तैयार कर रहा था कि उसकी वाणी सुने, और वह अंत में सुनता है। विलदत अय्यूब से पूछता है कि वह उन्हें तुच्छ क्यों समझता है और वे उसकी दृष्टि में गिरे हुए क्यों हैं? उत्तर स्पष्ट है, वे भी अय्यूब को ऐसा ही समझ रहे थे। इसीलिए मैंने कहा था कि उनके बीच इस समय कुछ शांति का समय था। संभवतः वे एक दूसरे को आंखें फाड़कर घूर रहे थे। उसके ये मित्र अब उसके मित्र नहीं थे। अय्यूब की पुस्तक 18 अध्याय के 4 पद में लिखा है, हे अपने को क्रोध में फाड़ने वाले, क्या तेरे निमित्त पृथ्वी उजड़ जाएगी और चट्टान अपने स्थान से हट जाएगी? विलदत पूछता है, तू क्या सोचता है कि परमेश्वर तेरी सुविधा के अनुसार संसार का संचालन करेगा? मेरे मित्रों, आपको स्मरण होगा कि विलदत प्रथाओं का मानने वाला था और वह अतीत के अनुभवों पर भी जी रहा था। उसके विचार में जो पूर्व काल में सही था वह आज भी सही है। उसका तरीका भी यही था। अय्यूब, क्या तू कुछ बुद्धि की बात करेगा या नहीं कि हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचे? तू क्या सोचता है कि हमारे लिए तेरी घृणा और परमेश्वर से क्रोधित होने पर तू फंदे से निकल आएगा? आगे देखिए, अय्यूब 18 के 5 में लिखा है, निश्चय दुष्टों का दीपक बुझ जाएगा और उसकी आग की लौ न चमकेगी। यहाँ पर अति सत्य, परंतु यह अय्यूब के संदर्भ में सही नहीं है। आगे अय्यूब 18 उसके 6-8 पद में लिखा है, उसके डेरे में का उज्याला अंधेरा हो जाएगा और उसके ऊपर का दिया बुझ जाएगा। उसके बड़े बड़े डग छोटे हो जाएंगे और वह अपने ही युक्ति के द्वारा गिरेगा। वह अपना ही पांव जाल में फंसाएगा, वह फंदों पर चलता है। अय्यूब, तू तो मछली के समान जाल में फंस गया रे। यह हमारे कारण नहीं, हम तो यहाँ तेरी सहायता के लिए आए हैं, परंतु तू हमारी बात नहीं मानता और नहीं सुनता है। तू कष्ट उठा रहा है क्योंकि तेरे जीवन में गुप्त पाप हैं। तू चलकर फंदे में स्वयं फंस गया है। मेरे मित्रों, कई बार हम ऐसा ही अपने दोस्तों और अपने प्रियों को देख करके कहते हैं कि तू स्वयं ही फंदे में फंस गया है, लेकिन हम उसे निकालने की चेष्टा नहीं करते हैं। यहाँ पर विलदत भी वही काम कर रहा है। अय्यूब 18 अध्याय उसके 9-10 पद में लिखा हुआ है, उसकी एड़ी फंदे में फंस जाएगी और वह जाल में पकड़ा जाएगा। फंदे की रस्सियां उसके लिए भूमि में और जाल रास्ते में छिपा दिया गया है। ध्यान दीजिए, तू फंदे में फंस गया है जैसे भालू, क्योंकि तू चारे से खेल रहा है। यदि यह सच नहीं होता तो तू फंदे में नहीं फंसता। देखिए, विलदत इन धार्मिक शब्दावलियों का उपयोग करके उन्हें ज्योमेट्री की समस्या बना देता है। पहले आप प्रमाणों को एकत्र करते हैं, इसके बाद निष्कर्ष निकालते हैं, परंतु जीवन ऐसा नहीं है। एक बात तो यह है कि जीवन में गलत विचार से आरंभ करना आसान है। यदि मूल विचार सही है तो विशेष अनुमान लगाया जा सकता है, परंतु यदि मूल विचार ही सही न हो तो निष्कर्ष भी गलत हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि क बराबर 10 है और आप क बराबर 15 मान लें तो आपका उत्तर सही नहीं होगा, चाहे आपकी विधि कितनी भी सही क्यों ना हो। मेरे प्रियो, ये लोग अपने अपने सूत्र काम में ले रहे थे, परंतु उनका मूल विचार गलत था। विलदत्त एक निश्चित नियम निर्धारित करके कहता है कि अय्यूब स्वयं जाकर फंदे में फंस गया है, अर्थात उसका कष्ट उनकी करनी का ही फल है। इसका अनुवाद यह भी हो सकता है, उसके पांव ही उसे जाल में ले आए और वह जाल पर चलने लगा। अय्यूब 18 अध्याय उसके 11 से 17 पद में हम पढ़ते हैं, चारों ओर से डरावनी वस्तुएं उसे डराएंगी और उसके पीछे पड़कर उसको भगाएंगी, उसका बल दुख से घट जाएगा और विपत्ति उसके पास ही तैयार रहेगी, वह उसके अंग को खा जाएगी, वरन काल का पहलौठा उसके अंगों को खा लेगा। अपने जिस डेरे का भरोसा वह करता है उससे वह छीन लिया जाएगा और वह भयंकरता के राजा के पास पहुंचाया जाएगा, जो उसके यहाँ का नहीं है वह उसके डेरे में वास करेगा और उसके घर पर गंधक छितराई जाएगी, उसकी जड़ सूख जाएगी और डालियां कट जाएंगी, पृथ्वी पर से उसका स्मरण मिट जाएगा और बाजार में उसका नाम कभी न सुन पड़ेगा। वह कह रहा है कि दुष्ट की देह रोग से नष्ट हो जाएगी, परमेश्वर की आग उसका निवास जला देगी और उसका नाम मिटा दिया जाएगा, उसका परिवार नाश हो जाएगा, उनका ना पुत्र होगा और ना पुत्री, उसका उजड़ जाना भावी पीढ़ी को विस्मित करेगा। दुष्ट के विषय में तो यह सब सच है, परंतु अय्यूब के लिए नहीं है। कोई बात पूर्ण रूप से सही हो सकती है, परंतु आवश्यक नहीं कि किसी व्यक्ति विशेष पर सही बैठे। यही कारण है कि आज अधिकांश परामर्श मेरे विचार में संकटपूर्ण होते हैं। मेरे विचार में अनेक अच्छे विश्वासी मनोवैज्ञानिक भी हैं और मैं आपको उनका नाम सुझा सकता हूँ, परंतु स्पष्ट बात तो यह है कि अधिकांश मनोवैज्ञानिकों का मूल विचार न होने के कारण उनका परामर्श कारगर सिद्ध नहीं होता है। जी हाँ, इसी प्रकार ये मित्र अय्यूब को परामर्श दे रहे हैं, परंतु सब व्यर्थ है। विलदत्त कहता है कि दुष्ट दंड पाएगा और उसका नाम मिटा दिया जाएगा। यह सच है, इतिहास में कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों जैसे हिटलर को आप देख सकते हैं, उनका नाश होना अवश्य था और वे हो गए, परंतु यह सत्य अय्यूब से सुसंगत नहीं है। अय्यूब 18 अध्याय उसके 18 पद में हम पढ़ते हैं, वह उजियाले से अंधियारे में ढकेल दिया जाएगा और जगत में से भी भगाया जाएगा। यह तथ्य संबंधित एक रूपक है, परंतु अय्यूब से संदर्भित नहीं होता है। आगे हम पढ़ते हैं अय्यूब 18 अध्याय उसके 19 और 20 पद में, उसके कुटुंबियों में उसके कोई पुत्र पौत्र न रहेगा और जहां वह रहता था वहां कोई बचा न रहेगा। उसका दिन देखकर पश्चिम के लोग चकित होंगे और पूरब के निवासियों के रोए खड़े हो जाएंगे। ध्यान दीजिए, बेटा बेटी नाती पोते सब चाहते हैं, वे गर्व और संतोष का स्रोत हैं। कभी कभी दुष्टों के बच्चे सबसे अधिक होते हैं। अय्यूब के पास एक भी संतान नहीं बची थी, वे सब मारे गए थे। यह वास्तव में विलदत्त की निर्दयता थी कि वह अय्यूब से ऐसी बातें करे। आगे चल करके हम देखेंगे कि परमेश्वर ने अय्यूब को पहले से भी अधिक संतान दी। अय्यूब की पुस्तक 18 अध्याय उसके 21 पद में लिखा है, निसंदेह कुटिल लोगों के निवास ऐसे ही हो जाते हैं और जिसको परमेश्वर का ज्ञान नहीं रहता उसका स्थान ऐसा ही हो जाता है। विलदत्त दुष्ट की व्याख्या करता है, उसकी आस्था और उसका अंत कैसे होता है। वह अय्यूब को दुष्टों की श्रेणी में रखता है और कहता है कि वह मार्ग के अंत में आ गया है। वह कहता है अय्यूब ऐसा ही है और दुष्ट का वर्णन तुझ पर सही बैठता है। निसंदेह यदि आप अय्यूब को देखेंगे तो स्वीकार करना होगा कि दुष्ट की व्याख्या अय्यूब पर सही बैठती है। वे विश्वास ही नहीं कर सकते थे कि अय्यूब की दुर्दशा का कारण कुछ और भी हो सकता है। वे तो बस यही मानते थे कि वह दुष्ट है और पाप छिपा रहा है। वे उसके कष्टों का अन्य कोई कारण नहीं स्वीकार कर पा रहे थे। अपने प्रतिवाद में अय्यूब कहेगा, क्या तुम यह नहीं सोच सकते कि परमेश्वर ने मुझे अपने जाल में फंसाया है और कारण नहीं दिखाया या नहीं दिया है। अतः इसकी अन्य व्याख्या है और आपका अर्थ निर्धारण सही नहीं है। मेरे मित्र, यहाँ पर अध्याय 18 समाप्त होता है। आइए हम आगे बढ़ें और अध्याय 19 में देखेंगे अय्यूब का प्रतिवाद। अब अय्यूब उसका उत्तर देता है। अय्यूब जो गलती करने जा रहा है वह यह है कि वह जानता है कि उसके मित्र गलत हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वह सही है। उसका स्वभाव ही गलत है। उसके मन परमेश्वर की गलत धारणा है, जबकि कभी कभी उसे ज्योति प्राप्त होती है। तो आइए हम देखें अय्यूब 19 अध्याय उसके 1 और 2 पद को। लिखा हुआ है, तब अय्यूब ने कहा, तुम कब तक मेरे प्राण को दुख देते रहोगे और बातों से मुझे चूर चूर करोगे। यदि यह कोई खेल होता तो प्रशिक्षक कह सकता था कि दूसरी टीम ने हमारी सुरक्षा तोड़ दी थी। अय्यूब के कथित मित्र उसकी सुरक्षा तोड़ रहे थे। अय्यूब 19 अध्याय के 3 पद में लिखा है, इन 10 बार तुम लोग मेरी निंदा ही करते रहे। तुम्हें लज्जा नहीं आती कि तुम मेरे साथ कठोरता का वर्ताव करते हो। मेरे मित्रों, विवाद बढ़ता गया और अय्यूब तथा उसके मित्रों में दूरी भी बढ़ती गई। वे तो गलत थे ही, अय्यूब भी गलत हो गया। अय्यूब का विचार था कि वे गलत हैं, इसलिए वह सही है। यदि अय्यूब का विवेक और जीवन परमेश्वर की उपस्थिति में खुला रहता तो वह क्या कहता? मैं अपना विचार प्रस्तुत करता हूँ। उसे अपने मित्रों से विवाद नहीं करना था। दुर्भाग्य की बात तो यही है कि हम सब अपनी रक्षा में प्रतिवाद प्रस्तुत करते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे प्रचार एवं शिक्षा देने का वरदान दिया है, परंतु मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि यह एक संकट का काम है, क्योंकि इसमें आप आलोचना और कटाक्ष के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। समय समय पर मुझसे कहा जाता है कि आपने बचाव में क्यों नहीं कुछ बोलते। आप अपने बचाव में एक छोटी पुस्तक भी लिख दें तो बहुत अच्छा है। इसका उत्तर है, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। किसी ने कहा कि आपके मित्र आपको जानते हैं, इसलिए उन्हें समझाने की आवश्यकता नहीं है, और आपके बैरी समझाने के बाद भी नहीं समझेंगे। मेरे प्रियो, समय के साथ साथ मैंने सीख लिया है कि परिस्थितियां स्वयं ही समझ देती हैं। मेरे विचार में ऐसी परिस्थितियों में समझाने का प्रयास आवश्यक नहीं है। यही कारण है कि मेरे अपने विचार में अय्यूब को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं थी। वह केवल हाँ करता रहता तो सब ठीक हो जाता। वह उनकी बातें सुनता और नमस्कार कहकर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देता, परंतु अय्यूब तो विवाद करके अपने आप को निर्दोष सिद्ध करना चाहता था। मुझे कुछ भक्तों का स्मरण है जिन्हें समय ने उचित सिद्ध किया है। साल्वेशन आर्मी के संस्थापक विलियम बूथ पर निर्दयता से दोष लगाए गए। उन्होंने अपना बचाव करने का प्रयास किया था, जबकि उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं थी। समय ने सत्य को प्रकट कर दिया था। स्वर्गीय श्री एम आर दे हान कलीसिया के पास्टर थे और उन पर कठोरता से दोष लगाए गए। उनके बचाव में कुछ लोग थे, परंतु उन्हें भी इसकी आवश्यकता नहीं थी। समय ने उनके कामों को उचित ठहराया और सिद्ध कर दिया कि उन पर लगाए गए दोष सब झूठे थे। मेरा अपना विचार भी यही है कि अय्यूब चुप रहता तो अच्छा होता। उसे अपने बचाव में कुछ कहने की भी आवश्यकता नहीं थी। वह अपने मित्रों से विलग हो गया। यदि वह चुप रहता तो उसके मित्र उस पर दोष नहीं लगाते। स्पष्ट है कि वह इस तथ्य को समझ नहीं पाया था। हम अय्यूब की पुस्तक 19 अध्याय के 4 पद में पढ़ते हैं, मान लिया कि मुझसे भूल हुई तो भी वह भूल तो मेरे ही सिर पर रहेगी। मेरी भूल तो मैं ही जानता हूँ, दूसरा नहीं। उसके मित्र उसकी भूल पकड़ नहीं पाए थे, अतः इसका अर्थ था कि वह स्वयं ही अपनी भूल से अनभिज्ञ था। किसी ने कहा है कि परमेश्वर ने हमें सिद्ध नहीं बनाया, परंतु उसने हमें अपनी भूल चूक के प्रति अंधा अवश्य बनाया है। मैं नहीं मानता कि यह परमेश्वर का काम है, परंतु हाँ, यह कहावत सच है, हम सिद्ध तो नहीं है। परंतु हम अपने दोष के प्रति अंधे हैं। अय्यूब भी अपने अनेक दोषों के प्रति अंधा है। अय्यूब 19 अध्याय उसके 5 और 6 पद में हम पढ़ते हैं, यदि तुम सचमुच मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई करते हो और प्रमाण देकर मेरी निंदा करते हो, तो यह जान लो कि परमेश्वर ने मुझे गिरा दिया है और मुझे अपने जाल में फंसा लिया है। विलदत कहता है कि अय्यूब स्वयं जाल में फंसा है, परंतु अय्यूब का कहना था कि यह परमेश्वर का काम है और उसने कारण नहीं बताया। क्या यह संभव था कि परमेश्वर ने किसी उद्देश्य के निमित्त ऐसा किया और अय्यूब को कुछ नहीं बताया? निसंदेह हाँ, परंतु उसके मित्र अटल थे, उनकी बात ही सही है। अब वह अपने मित्रों से निवेदन करता है। अय्यूब की पुस्तक 19 अध्याय 7 से 11 पद में लिखा है, देखो मैं उपद्रव उपद्रव यूं चिल्लाता रहता हूँ परंतु कोई नहीं सुनता। मैं सहायता के लिए दुहाई देता रहता हूँ परंतु कोई न्याय नहीं करता। उसने मेरे मार्ग को ऐसा रूंधा है कि मैं आगे चल नहीं सकता और मेरी डगरें अंधेरी कर दी गई हैं। मेरा वैभव उसने हर लिया है और मेरे सिर पर से मुकुट उतार लिया है। उसने चारों ओर से मुझे तोड़ दिया, बस मैं जाता रहा और मेरी आशा को उसने वृक्ष के समान उखाड़ डाला है। उसने मुझ पर अपना क्रोध भड़काया है और अपने शत्रुओं में मुझे गिनता है। यहाँ पर उसका कहना था कि परमेश्वर उसके साथ कठोरता का व्यवहार कर रहा है और इसका कोई न कोई कारण अवश्य है। परमेश्वर का उद्देश्य उसके मित्रों के निष्कर्ष से सर्वथा भिन्न है। अय्यूब स्वीकार करता है कि वह अपने कष्टों में परमेश्वर का यह उद्देश्य नहीं देख पा रहा है। वह कहता है कि उसके प्रियजन उसे त्याग चुके हैं और उसके मिलने वाले उससे दूर हो गए हैं। उसके मित्र उसे भूल गए हैं, उसकी दासियां उसे पहचानती नहीं हैं, उसके सेवक उसकी आज्ञा नहीं मानते हैं, उसकी पत्नी भी उसके लिए अनजान हो गई है, युवा बच्चे भी उसे तुच्छ समझते हैं, उसकी चमड़ी हड्डियों से चिपक गई है। वह कहता है 19 अध्याय के 20 पद में, मैं मृत्यु से बाल बाल बच गया हूँ। वह अपने मित्रों से दया की याचना करता है। हम अय्यूब 19 अध्याय उसके 23 और 24 पद में पढ़ते हैं, भला होता कि मेरी बातें लिखी जाती, भला होता कि वे पुस्तक में लिखी जाती और लोहे की टांकी और शीशे से वे सदा के लिए चट्टान पर खोदी जाती। अय्यूब की मनोकामना थी कि उसकी बातें लिख ली जाएं। यदि उसका सबसे बड़ा बैरी लिखे तो भी वह स्वीकार करेगा। वह चाहता था कि उसकी बातें चट्टान में खोद कर लिख दी जाए कि वह कह पाए, देख मेरे बैरियों ने मेरे बारे में क्या कहा था और वह मेरी प्रशंसा करे। मेरे मित्रों, क्या आप चाहते हैं कि आपका सबसे बड़ा बैरी आपकी जीवनी को लिखे? मुझे तो अपने घनिष्ठतम मित्र पर भी विश्वास नहीं कि वह मेरी जीवनी को लिखे। मैं तो परमेश्वर की पुस्तक में मेरी जीवनी से संतुष्ट हूँ, क्योंकि वहाँ मेरी जीवनी सर्वथा सही होगी, जो एक महत्वपूर्ण बात है। अब अय्यूब अपने महान विश्वास को व्यक्त करेगा। उसके मित्र उसे हतोत्साह करना चाहते थे, जो वास्तव में शैतान का काम था। शैतान ने उसके मित्रों द्वारा उसे ऐसे स्थान पर खड़ा कर दिया था जहां वह दीन होने की अपेक्षा परमेश्वर के सामने अपने बचाव का प्रयास कर रहा था। परंतु अय्यूब अभी पूरी तरह टूटा नहीं था। उसके मित्र उसे पूरी तरह हतोत्साहित कर रहे थे और नहीं कर पाए थे। वह अब भी परमेश्वर में बहुत विश्वास रखता था और यहाँ वह बाइबल की महान गवाहियों में से एक गवाही देता है। और इस गवाही का महत्व यह है कि गवाह रोगी है और मरने पर है, उसका सर्वनाश हो गया है। वह परमेश्वर के कठोर अनुशासन परीक्षण के अधीन है। उसे कोड़ी की मार का दर्द अपनी पीठ पर हो रहा है, परंतु इसके उपरांत भी वह कहता है अय्यूब के पुस्तक 19 अध्याय उसके 25 से 27 पद में, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। उसका दर्शन मैं आप अपनी आँखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं। यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो जाए। मेरे मित्रों, अय्यूब रोग अवस्था में अपने विनाश से अघात ग्रस्त कहता है कि वह मरना चाहता है। वह अनंत मृत्यु नहीं, शारीरिक कष्ट से मुक्ति हेतु प्राण त्याग की कामना कर रहा था। वह जानता था कि उसका पुनरुत्थान होगा। वह जानता था कि वह देह में परमेश्वर को देखेगा, चाहे कीड़े उसके देह को नाश क्यों न कर दे। वह मृतकोत्थान को मानता था, पुनर्जीवन को मानता था। मेरे मित्रों, हमारी देह मिट्टी में मिल जाएगी। मसीह में मरने वालों की देह सो जाएगी और आत्मा तुरंत मसीह के पास पहुंच जाएगी। यह कैसी अद्भुत बात है। अय्यूब फिर अपने मित्रों से आग्रह करता है। अय्यूब की पुस्तक 19 अध्याय उसके 28 और 29 पद में लिखा है, तो भी मुझ में तो धर्म का मूल पाया जाता है, और तुम जो कहते हो हम इसको कैसे सताएं, तो तुम तलवार से डरो, क्योंकि क्रोध का परिणाम तलवार का दंड है, जिससे तुम जान लो कि न्याय होता है। तुमने जो मुझसे कहा उसके लिए क्या तुम परमेश्वर से नहीं डरते। उनके समस्त आरोपों के उपरांत भी अय्यूब विश्वास से नहीं डगमगाया। उसे पूर्ण विश्वास था कि मुक्तिदाता आएगा और वह उसे मुक्ति देगा, अर्थात मुक्ति पाने वालों में वह गिना जाएगा। मेरे प्रिय मित्र, यदि आप भी किसी प्रकार की परेशानी या बीमारी अवस्था में हैं, तो इस बात को आप भी अय्यूब के समान रख लें और परमेश्वर पर विश्वास करें कि वह आपको अवश्य ही छुटकारा देगा, आपके लिए एक मुक्तिदाता आपको देगा, ताकि आपके शारीरिक बीमारी से और आत्मिक हरेक बुराइयों से छुटकारा दे। मेरे प्रिय मित्र, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे विश्वास है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अय्यूब के जीवन से अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त किया है। प्रभु आप सबकी सहायता करें, ताकि आप भी विश्वास में और मजबूत बन सकें। प्रभु आप सबके साथ रहे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
जान दिया तूने अपने जीवन का, धन्य है मेरे दाता, कर्ज तेरा मैं कैसे उतारूं, ये समझ में न आता। जान दिया तूने अपने जीवन का, धन्य है मेरे दाता, कर्ज तेरा मैं कैसे उतारूं, ये समझ में ना। छू